खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए, तमाम बच्चों के लिए, भाई फरूख के लिए और भाई जुल्फकार और ब्रजेश और बाकी तमाम के लिए जिन्होंने खुदा की परस्तिश को सरंजाम दिया, आप सबके लिए हौसला अफजाई है। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत अच्छी जॉब, वेल डन, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुनना शुरू करें, सीखना शुरू करें, खुदावंद के हुजूर झुक जाएंगे और अपनी अपनी हालत का जायजा लेंगे, क्योंकि इस जगह पर आज इस हसी सुबह में उसके हुजूर आए हैं ताकि रूहुल कुद्दस से भर जाएं। और उसने ये इंतजाम और ये हल ईमानदारों के लिए मुहैया किया है कि वो मुसलसल तौर पर उसके रूह से मामूर होते जाएं। हर एक के लिए मौका है कि वो अपनी शख्सी हालत में खुदावन से बात करे खामोशी से। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की हसी सुबह के लिए तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी कि तेरे तख्त के पास आए और जो दलेरी, जो भरोसा, जो ईमान खुदावन खुदा तूने हमें बख्शा है उसके लिए तेरा शुक्र हो। और जो दिन ब दिन जैसे तेरे बारे में सीखते हैं, तेरे बेटे के हम शक्ल बनते हैं, मजबूत होता जाता है, इसके लिए तेरा शुक्र हो। खुदा बाप, आज के कलाम के हिस्सा को ले और हम सब के लिए बरकत का बाय सहरा। हमारी सारी सुस्ती, लापरवाही, कमी कमजोरी को और हमारे मुखालफ के सारे तीरों से बचा जो हमारी तवज्जो को बांटते हैं ताकि तेरे कलाम को ना समझें। सो हमें हिकमत और दनाई दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मेरे साथ निकालें इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाब, उसकी 22वीं आयत। जैसा कि हम कलाम खुदा में से सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस की कुदरत के बारे में, और हमने सीखा इससे पहले कि हम याद दहानी के तौर पर आपको वो बातें याद कराऊं, एक बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है। जब भी हम मुश्किल में, तकलीफ में होते हैं तो हम ईमानदार खुदा को ये वादा या एक दूसरे को ये बात याद दिलाते हैं कि ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, ये सच है। लेकिन बहुत दफा ईमानदार पूरी आयत को भूल जाते हैं और यकूब 5 बाब में लिखा हुआ है उसकी 16वीं आयत में कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। हम बहुत दफा मुश्किल में सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, बल्कि जो के बहुत ही बुनियादी हिस्सा है वो भूल जाते हैं कि एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि शिफा पाएं। हमें यह हिस्सा भूलने की जरूरत नहीं। आज आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप मसीह यसु में जो भी ईमानदार है, ख्वा वो बहन है, भाई है, बुजुर्ग है, बच्चा है, उसे खुदावंद यसु मसीह में काहिन ठहराया गया है और उसे ये एजाज और ये इज्जत और ये शरफ हासिल है कि वो काहिन के तौर पर खुदावंद यसु मसीह के तख्त के सामने जा सकता है। जैसे कि इब्रानियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत में कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो हमारी मदद कर सकता है, पस आओ हम फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी से जाएं ताकि हम पर फजल हो। बहुत दफा लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप दुआ करें, मेरा यसु मसीह के साथ कोई, क्या कहते हैं कि यसु मसीह ने कोई मुझे मुख्तलिफ टेलीफोन नहीं दिया हुआ कि वो मेरी ही दुआ को सुनेगा। आपकी हौसला अफजाई के लिए हर एक ईमानदार को ये बरकत और ये कुदरत हासिल है कि वो उसके तख्त के पास जाए। और लिखा है कि जो दुआ ईमान से मांगी जाएगी उससे खुदा सुनेगा और जवाब देगा। सो इफ़सियों 2 बाब उसकी 22वीं आयत में जो हमारा मजमून है, हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के बारे में। हमने सीखा रूहुल कुद्दस कौन है, पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी रूहुल कुद्दस कब ईमानदार पाते हैं। तीसरी बात हमने सीखी ईमानदार रूहुल कुद्दस की सुकूनतगाह है। चौथी बात हमने सीखी ईमानदारों को रूहुल कुद्दस इसलिए दिया गया कि वो मसीह के हम शक्ल बने। 5वीं बात, रूहुल कुद्दस की कुदरत हर वक्त ईमानदार के लिए मौजूद है। और छठी बात हमने सीखी थी रूहुल कुद्दस के वसीला से ईमानदार खुदावंद खुदा की मर्जी को, उसके मकसद को, उसके मंसूबा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं इस जमीन पर। और आठवीं बात, ईमानदार रूहुल कुद्दस के वसीला से उन पांच अनामात को हासिल कर सकते हैं जो रासबाजी का ताज है, खुशी का, फखर का, और मुसीबतों में और बर्दाश्त में और खासकर खिदमत में वफादार रहने पर मिलता है। और नौवीं बात हमने सीखी थी कि रूह कुद्दस की कुदरत से ईमानदार मसीही जिंदगी के सफर को पूरा कर सकता है। और दसवीं बात हमने पिछले दिनों में सीखी थी कि रूह कुद्दस खुदा का रूह और खुदा का कलाम ईमानदारों के लिए क्या है, रहनुमाई का बायस है। बाइबल नक्शे के तौर पर है और रूह कुद्दस हमें ताकत के तौर पर दी गई है कि उस सफर को मुकम्मल करें। आज जो आपको सिखाना चाहता हूं वो हमारा जो 11वां पॉइंट है वो ये है कि रूहुल कुद्दस की खिदमात ईमानदार के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में एक मुखालफ है जो नहीं चाहता कि ईमानदार सच्चाई से वाकिफ हों, क्योंकि जब ईमानदार सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई उनको आजाद करती है, उनके बंधनों को, उनके जुओं को, उनकी सुस्ती को, लाचारी को, लापरवाही को दूर करती है। और हमने और सात किस्म के अजर मुकाशफा की किताब में से देखे थे, मुकाशफा 2:7 में, जिंदगी के दरख्त के पास जो खुदा के फरदौस है, ईमानदारों को ये शरफ हासिल होगा जब वो खुदा की मंसूबा में जिंदगी बसर करेंगे। और फिर मुकाशफा 2:4 में, ईमानदार जब गालिब आएंगे उन पर दूसरी मौत का, यानी के वो अब तक खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। और तीसरा मुकाशफा 2:17 में, ईमानदारों को सफेद पत्थर दिया जाएगा जिस पर ईमानदार जानता होगा कि उसका नया नाम क्या है। और चौथा मुकाशफा 2:27-28 तक, जो कोई खुदावंद के कामों के मुआफिक अमल करेगा और उस पर फातह ठहरेगा, खुदावंद उसे सुबह का सितारा नाम के तौर पर देगा। और पांचवा मुकाशफा 3:5 में, जो गालब आए उसे वो सफेद पोशाक देगा और अपने और खुदा बाप के फरिश्तों के सामने उसका नाम का इकरार करेगा। और छठा, जो गालब आए उसे वो खुदा के नए यरूशलम में, जो नया शहर जिसके आप शहरी हैं, जिसके आप शहरी हैं और आपका नाम हर एक का जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसकी किताबे हयात में, उस नए यरूशलम में आपके लिए हर एक के लिए उसने जगह तैयार की है। और जो गालिब आएगा उसे वो क्या बनाएगा, एक सतून के तौर पर बनाएगा, और जो खिदमत उसने जमीन पर की होगी खुदा उसे क्या करेगा, उस पर जाहिर करेगा। और सातवीं बात, मुकाशफा 3:21 में देखा था कि जैसे यीशु मसीह गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठा है, वो जो गालिब आएंगे उनको अपने तख्त पर बिठाएगा। ये थी याद दहानी के तौर पर बातें जो हमने सीखी। आज ईमानदारों के लिए जो रूहुल कुद्दस की खिदमात है, ये सात खिदमात है, लेकिन जैसे खुदा का रूह मुझे गाइड करेगा, जैसे वो मेरी रहनुमाई करेगा, और वक्त के लिहाज से आज आपके साथ हो सकता है मे बी पहली 3 खिदमात रूहुल कुद्दस की आपके साथ शेयर की जाए, आपको सिखाई जाए। और वो ये हैं, मेरे साथ निकालें इफिसियों 2:22, जो कि हमारा बुनियादी हवाला है जिसकी बुना पर हम सीख रहे हैं। और तुम भी, यानी के ईमानदार, उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हर एक ईमानदार खुदा का मस्कन है और खुदा चाहता है कि हम मुसलसल तौर पर बहुत से ईमानदारों को उसके पास लाएं और खुशखबरी का पैगाम दें ताकि वो भी खुदा का मस्कन बने। आज हम सीखेंगे कि सात मखसूस खिदमात हैं जो निजात पाने पर ईमानदारों को रूह कुदस की तरफ से अता की जाती हैं। ये खिदमात कुछ यूं हैं: पुर असर फजल, यानी के वो हकीकी फजल जो ईमानदारों को हासिल है, रूह कुदस रूहानी तौर पर हर एक शख्स के मुर्दा ईमान को लेता है और उसे निजात के लिए मौसर या पायदार बना देता है। रूह कुदस मुस्बत ख्वाहिश के लिए इंसानी रूह की हैसियत से रूहानी तौर पर मुर्दा शख्स के लिए काम करता है। इससे मुराद के जब हम यीशु मसीह से बगैर जिंदगी गुजारते हैं तो हम मुर्दा हालत रखते हैं, तो जब हम उसे कबूल करते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और कहते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, तो रूह कुदस हमारा जो मुर्दा हालत होती है, हमारी जो मुर्दा ईमान होता है, उसे लेता है और उस मुर्दा ईमान को बीज के तौर पर खुदा के खेत में बोता है और हमारे लिए जो फल पैदा होता है वो निजात हासिल होती है, वो हमें नई पहचान देता है, वो हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना देता है। बस ये किस बना पर होता है? जब खुशखबरी का पैगाम ईमानदार सुनकर उसे कबूल करते हैं। और जैसा हमने इस पर पहले सीखा है इफ़सियों 2 बाप उसकी 8वीं आयत में से, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना ईमाल के सबब से है ताकि कोई फखर ना करे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार को खाकसारी की हालत में जो भी खा कोई भाई मुबशर पादरी साहबान कोई भी कलाम सुना रहा है और जो कोई भी उस कलाम को सुनकर कबूल करता है वो इस बना पर उस पुर असर फजल को हासिल करता है जिसमें ईमानदारों को क्या मिलती है? निजात मिलती है। ये पहली बुनियादी बात है जो ईमानदारों की जिंदगी में रूहुल कुद्दस करता है, यानी के हमारी नासमझी में, यानी के हमारी मुर्दा हालत में वो हमारे ईमान को लेता है और हमें हिकमत और दनाई देता है कि हम निजात के तोहफे को समझें, कि हम निजात की उस बरकत को, उस बख्शिश को समझें। ये पहली बात रूह कुद्दस की जो खिदमत है वो ईमानदारों के लिए करता है। दूसरी बात, नई पदेश से मुराद है नए सिरे से पैदा होना। ये नई पदेश रूह कुद्दस की खिदमत है जो निजात पाने पर ईमानदारों को हासिल होती है। इससे मुराद जब हम यीशु मसीह में ईमान लाते हैं तो हम नए इंसान बन जाते हैं, हमारी नई पदेश होती है जो रूहानी पदेश है, यानी के खुदा बाप की तरह हो जाते हैं। और इस पर आपको मैंने सिखाया था कि ईमानदार 3 हिस्सों में तब्दील होता है जिसमें बदन, जान और जिस्म आ जाता है। जैसे यीशु मसीह बदन, जान और जिस्म रखता है, कामल हो जाता है, हम भी उसकी रास्तबाजी में शामिल होकर उसकी मानद बन जाते हैं और हम में वो रूह का हिस्सा आ जाता है और हम नई पदेश के तजर्बा को हासिल करते हैं। रूह कुद्दस अबदी जिंदगी को ईमानदारों में मंसूख कर देता है। और इसके लिए बाइबल क्या कहती है? ये तब्दीली है या सूरत बदल जाना है, यानी कि निजात पाने पर ये तजर्बा ईमानदारों को होता है। और तीतस मेरे साथ निकाले, तीतस उसका तीसरा बाप, उसकी पांचवी आयत को मेरे साथ निकालें और पढ़ें। क्या लिखा है? तीतस तीन बाप उसकी पांचवी आयत। तो उसने हमको, उसने किसने यानी कि खुदावन ने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। निजात हमारे किसी काम की बिना पर या खूबसूरत या कोई के उम्दा किस्म की काबिलियत रखने के बाद नहीं, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि अपनी रहमत के मुताबक नई पदेश के गुसल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो नई पदेश का तजर्बा यानी के रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में आता है और हम नए इंसान बन जाते हैं। और ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ खुदा रूहुल कुद्दस की कुदरत के बायस आती है, जब आप सादा तौर पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और आप ईमानदार खुदा के फर्जंद बन जाते हैं और मसीह के हम मीरास बन जाते हैं। यूहन्ना 3 बाप उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम उस नई इंसानियत में बदल जाते हैं, हमारी सूरत हमारी हालत बदल जाती है और हम ईमान में यीशु मसीह में नई हालत रखते हैं। और फिर आसमान पर हमारा जो खाता खुलता है, जिसे बैंक अकाउंट कह सकते हैं, रूहानी बैंक अकाउंट, ईमानदारों का खाता खुलता है और उसमें हर तरह की रूहानी नेमतें ईमानदारों को बख्शी गई हैं। और इसीलिए पालूस रसूल रोमियो 8 बाप उसकी 17वीं आयत में कहता है कि पास अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी कि मसीह में वो तमाम बरकात, वो रूहानी नेमतें, वो हर तरह की बरकात ईमानदारों को मिलती है। क्योंकि फिर गलतियों 4 बाप उसकी 7वीं आयत में पालूस कहता है कि पास अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे बन गए, और जब बेटे हो तो खुदा के वसीला से वारस भी हो। उन तमाम बरकात के हम वारस हो जाते हैं जो यीशु मसीह में ईमान लाते हैं। और यीशु मसीह जब निकुदीमस से बातचीत कर रहा था तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? 3 बाप में, यूहन्ना 3 बाप की उसकी 1 आयत से 18वीं आयत तक ये कहानी हमें पता चलती है। संडे स्कूल के बच्चों ने बहुत दफा ये सीखी है, आपने भी सीखी होगी, नहीं तो आज इसको सुने। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 बाप उसकी 6 आयत में क्या कहा? जो जिस्म है वो जिस्म से है और जो रूह है वो रूह से पैदा हुआ है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में नई पैदाइश हासिल करते हैं तो हम उसके मीरास के क्या बन जाते हैं? हकदार बन जाते हैं और हमें वो बरकात हासिल होती है। ये है नई पैदाइश, और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से और खुदा के फजल से। और तीतस जैसे कहता है कि हमें रूहुल कुद्दस में नई पैदाइश मिलती है और ये रूहुल कुद्दस के वसीला से है। और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी का वारस है, वो कभी भी अपनी हमेशा की जिंदगी नहीं खोएगा। ये नई पैदाइश की जमानत है जो रूहुल कुद्दस की मामूरी और उसकी हजूरी ईमानदारों के लिए जमानत के तौर पर है। اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شک یا کوئی ایسا شبہ ہے کہ آپ نے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایسا گناہ کیا تو آپ اپنی نجات کھو دیں گے، تو پھر آپ غلط ہیں، ابلیس آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں، اور وہ ہم سے اس زندگی کو واپس نہیں لیتا۔ یہ ہے دوسری بات جو روح القدس کی خدمت ایمانداروں کے لیے جاری ہوتی ہے، کہ وہ ہماری مردہ حالت کو نئی حالت میں بدل دیتا ہے، جسم کو روح میں بدل دیتا ہے۔ یعنی کہ جسمانی حالت کو وہ جو موت کا سامنا رکھتی ہے، جو موت کی حقدار ہے، اسے زندگی کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور ایماندار پورے پورے طور پر محفوظ ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلا تھسلونیکیو اس کا پانچواں باب اس کی 23 آیت کو۔ میں نے آپ کو اس پر سکھایا تھا کہ تین حصے ایماندار رکھتا ہے، اور یہ آج آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کروں گا۔ پہلا تھسلونیکیو 5 اس کی 23 آیت، غور سے سنیں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب اور محفوظ رہیں۔ یہ خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کی کیا ہے؟ خدمت ہے، ان کی ضمانت ہے کہ وہ جب تک نہ آئے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے کوئی بھی میرے ہاتھ سے ان کو چھین نہیں سکتا، یعنی کہ وہ ہلاکت کے فرزند نہیں بن سکتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اور یہ نئی پیدائش کی جو خدمت روح القدس آپ کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں کرتا ہے، بے شک آپ نے یہ باتیں پہلے سنی ہوگی، لیکن آج جو بات، جو سچائیاں آپ کو سکھا رہا ہوں، وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ ہی نہیں بلکہ اور جو کوئی نئے آئے ہیں اور جو کوئی سنیں گے نئے ایماندار، ان کے لیے مدد کا اور تربیت کا باعث بنیں۔ تیسری خدمت، پہلی ہم نے دیکھی پر اثر فضل، دوسری خدمت ہم نے روح القدس کی دیکھی کہ وہ ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ کراتا ہے، اور تیسری خدمت روح القدس کا بپتسمہ۔ روح القدس کا بپتسمہ، جب ہم ایماندار دیکھتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ روح القدس کی خدمت ہے، جس میں وہ یسوع مسیح کے ساتھ شراکت میں ہر ایک ایماندار میں داخل ہوتا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر پر اثر فضل ہوتا ہے، آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ ہمیں ملتا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے، میرے ساتھ نکالیں ایمال اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت کو۔ لکھا ہے رسولوں کے ایمال اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع مسیح شاگردوں سے بات کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے کہ تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور ہم دوسرے باب میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو پترس اور باقی شاگرد جو ٹھہرے ہوئے ہیں، روح القدس نازل ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، اور اس وقت تقریباً جو کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اور بائبل مقدس صرف ان لوگوں کا بتاتی ہے جنہوں نے اس وقت یسوع مسیح کے کلام کو سنا और कबूल किया, और उनका जो नंबर है वो 3000 लोगों का है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दी, जिनको उस वक्त रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। और ये किस बना पर हुआ? इमाल दो बाप उसकी 11वीं आयत को देखें, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। ये जितने भी लोग जो बहुत से ममालक से हैं, बहुत से इलाकों से हैं, जब पतरस और बाकी शिगिर्द रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, वो गैर जुबानों में बात कर रहे हैं, तो हर एक इस बात को, इस कलाम को सुन रहा है अपनी जुबान में। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? ईमान सुनने से पैदा होता है। पहली बात जो ईमान को तकवीयत देती है वो है सुनना, यानी कि खुदा का कलाम, और सुनना मसीह के कलाम से। जब मसीह का कलाम सुनते हैं तो वो हमारे लिए निजात का बायस बनता है। और रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे लिखा है। आगे चलकर हमें यूल नबी की जो नबूवत के बारे में पता चलता है कि आखिरी याम में सब पर रूहुल कुद्दस नाजल होगा। और इसके बाद इमाल दो बाप उसकी 22वीं आयत में कि वो बाप से जो वादा किया गया, बाप ने जो वादा किया है, रूहुल कुद्दस को हासिल करेंगे। इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं इमाल 33वीं आयत में तो रूहुल कुद्दस का नजूल उन पर जिन्होंने उसे सुना, और फिर सुनने पर ही बात खत्म नहीं होती बल्कि कलाम को कबूल करना या उस पर ईमान लाना जरूर है। 33वीं आयत में लिखा है उन्होंने सुना, इमाल दो बाप 11वीं आयत में लिखा है उन्होंने सुना, और फिर इमाल दो बाप 37वीं आयत में लिखा है उन्होंने सुना, लेकिन इमाल 44वीं आयत में लिखा है, दो बार 44वीं आयत में, पस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। बाइबल मुकद्दस ईमान लाने वालों के बारे में बताती है जिनको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ उस वक्त जब उन्होंने यीशु मसीह के कलाम पर यकीन किया, जब उनके दिलों पर ठोकर लगी और वो क्या हुए? रूहुल कुद्दस से भर गए। ये रूहुल कुद्दस की खिदमत है जो ईमानदारों के लिए है, और ये खिदमत रूहुल कुद्दस करता है। मेरे साथ देखें पहला करंथियों उसका दो बाप, मेरे साथ निकालें, वहां पर एक और सच्चाई जो के हमें बाइबल मुकद्दस बड़े वाजह तौर पर बताती है। पहला करंथियों 12वां बाप उसकी 13वीं आयत में, ये यहां पर रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे में हमें इसके बारे में पता चलता है। 13वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो ख्वा यूनानी ख्वा गुलाम ख्वा आजाद एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो रूहुल कुद्दस आपके अंदर सकूनत करता है। अगर आपके जहन में कोई और तरह की बात है या सोच है कि आपको कुछ करना पड़ेगा या आप गैर जुबान बोलेंगे तो तब आप जानेंगे कि रूहुल कुद्दस आपको मिला है, या फिर कोई और अमल करेंगे तो तब पता चलेगा। नहीं, जैसे ही आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं रूहुल कुद्दस आपके अंदर सुकूनत करता है। और क्या लिखा है? एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। और इसी तरह गलतियों 3 बाप उसकी 26वीं आयत से 27वीं आयत में क्या लिखा है, मेरे साथ देखें। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, गौर करने की जरूरत है, ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو. تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا, نہ کوئی یونانی, نہ کوئی غلام, نہ آزاد, نہ کوئی مرد, نہ عورت, کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اسی طرح افسیوں 4:5 اس کی 5 آیت میں پالوس رسول اس سچائی کو بڑے واضح طور پر کر دیتا ہے. افسیوں 4:5 اس کی 5 آیت, ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسما, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. آپ کو یہ جو بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے اس لیے تاکہ آپ جانیں کہ آپ کی حالت, آپ کا مقام کیا ہے. آپ جیسی حکمت دنائی روح القدس میں مجھے, بھائی ذوالفقار کو, پاسٹر سلمون اجاز صاحب کو, اور کسی پاسٹر سلمون کو اور کسی پاسٹر صاحبان کو, ہر ایک کے لیے مصافی موقع ہے, یعنی کہ ایک جیسا ہی موقع ہے, ایک جیسی ہی قدرت یسوع مسیح پر ایمان لاتے وقت دی گئی ہے. یہ 3 باتیں ہیں جو آپ کو آج سکھائی ہیں. پر اثر فضل, یعنی جو ہمارے مردہ ایمان کو کیا بناتا ہے, پائیدار یا پر اثر ایمان بناتا ہے, تاکہ ہم کیا بنے, کیا جانے کہ ہمارے پاس نجات ہے, نئی پیدائش کا تجربہ, یعنی کہ یسوع مسیح کے ہم شکل اس کی مانند بن جاتے ہیں, اور 3 بات کہ روح القدس کا بپتسمہ, یعنی کہ خدا باپ, بیٹے اور روح القدس تک ہماری رسائی ہے, پہنچ ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی ایسا عمدہ کام یا ایسی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے, یا کہ آپ کو یہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے پھر روح القدس نازل ہوگا. نہیں, وہ عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا اور وہ زمین پر ہی ہے اور اس کی خدمت زمین پر ہی رہے گی, اور یہ خدمت روح القدس کی خدمت جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا, جب مصیبت کا دور آئے گا اس وقت روح القدس زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور ایماندار بھی زمین پر نہ ہوگے, اور یہ مصیبت کا دور ہوگا تب روح القدس زمین پر کام نہیں کرے گا, لیکن موجودہ دور میں وہ ہر ایک کے اندر ہے. اور ہم جو کہ خدا کی فوج کے سپاہی ہیں اور اس زمین پر مسافر ہیں, اس سفر کو کر رہے ہیں, اس سفر کو صرف اور صرف روح القدس کی قدرت کے باعث طے کر سکتے ہیں. آج آپ کیسے بھی دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنے کی ضرورت ہے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ملک کی فوج کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کو کیا کرے, اپنے بازوؤں میں سنبھالے رکھے, کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ملک کی سرحدوں کی کیا کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کو, ایمانداروں کو, ملک کے ترقی کے لیے, ملک کے صدر کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک بحال ہو. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ایماندار اکٹھے ہو کر خاک سر ہو کر دعا کریں گے تو خدا آسمان سے ایمانداروں کی دعا کو سن کے ان کے ملک کو بحال کرے گا, ان کے گھروں کو بحال کرے گا, اور آپ سب سے بڑھ کر مسیح یسوع کی نمائندگی کریں گے, ایک دوسرے کو جب حوصلہ دیں گے, ایک دوسرے کے لیے جب دعا کریں گے. اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کی جو فوج ہے اس میں 2 قسم کے فوجی پائے جاتے ہیں, एक जो पहली किस्म के सिर्फ और सिर्फ परेड के लिए तैयार किए जाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा ड्रेस होता है, साज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मखसूस वक्तों पर क्या करते हैं, काम करते हैं, और वो सलामी के तौर पर और बहुत सी और एक्टिविटी यानी के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक फौज है जो बॉर्डर पर मुल्क की सरहदों के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ती हैं। लेकिन आज इन दो फौजों को मैं आप तक रूहानी तौर में इस बात को खत्म करना चाहता हूं, आप कौन सी फौज का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं? वो जो सिर्फ कपड़े पहनकर सिर्फ सलामी के लिए या सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के दिन पर या और कोई भी खुशी का दिन है वहां पर साज को बजाते हैं अपनी कौम के लिए, या फिर आप कैसे फौजी बनना चाहते हैं जो सरहदों पर खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं? इसी तरह रूहानी तौर पर भी आप किस किस्म के मसीही मुसाफर हैं? क्या इस किस्म के मसीही मुसाफर या फौजी तो नहीं कि कपड़े पहन लिए और कहा कि हां मैं यीशु मसीह का क्या हूं, पैरोकार हूं, लेकिन जिंदगी में कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं? ऐसे फौजी इस सफर को, इस जंग को, इस दौड़ को नहीं जीत सकते। वही फौजी जीतते हैं, वही दौड़ने वाला दौड़ को जीतता है, वही सफर को खत्म कर सकता है जो रूहानी तौर पर जैसी भी हालत है, टूटे हुए हौसले में, कमजोरी में, हर तरह के दुख में, मुसीबत में यही कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरा जोर मेरी कमजोरियों में, मेरी नाकामियों में, मेरी लाचारियों में पूरा होता है, ताकि ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप की तरफ से हो और रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी, रूहुल कुद्दस की कुदरत से यीशु मसीह की नुमाइंदगी इस जमीन पर हो। आप रूहानी तौर पर फौज हो यीशु मसीह की, जो फौज जिस्म और खून और किसी इंसान से नहीं लड़ती, बल्कि इंसानी ख्वाहिशों से, उस बुरी फितरत से लड़ती है। आज आप कौन सी फौज का हिस्सा हैं? क्या वो सजी हुई फौज है जो सिर्फ बैंड बजाती है या सलामी देती है, या वो फौज है जो अपनी जान की फिक्र नहीं करती बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर है? आप अपनी जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए कहां तक उस सफर में हैं? आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और इन दो बातों को अपनी जिंदगी में लेकर जाएं कि आप किस किस्म के फौजी हैं, किस किस्म के मुसाफिर हैं, किस किस्म के दौड़ दौड़ने वाले हैं। क्योंकि उसकी हजूरी में जब हाजिर होंगे तो किसी के पास ये कहने के लिए बहाना या तकरार ना होगा कि मेरे लिए कोई बरकत मुहैया नहीं की गई। निजात पाने पर 40 नेमतें ईमानदारों को दी जाती हैं। हो सकेगा तो ये मुस्तकबिल में इस पर सीखेंगे, लेकिन आज 3 जो खिदमात रूहुल कुद्दस की आपके साथ बांटी हैं और खुदा का रूह है जो आपको हिकमत और दनाई देगा कि इन सच्चाइयों को जाने। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, हमें ऐसे फौजी बना के अपनी जान को हर रोज तेरे लिए खुदा खुदा कुर्बान करने के लिए तैयार रहें और कहें कि हम जिंदा नहीं रहे बल्कि तू हम में जिंदा है। हमें ऐसे मुसाफिर बना कि हमारा भरोसा और तवक्कल, हमारा भरोसा और तवक्कल सिर्फ और तेरे जिंदा कलाम पर हो जो हमारे कदमों के लिए चिराग है और रूह के लिए जो हमारी कुव्वत है। हमें ऐसे मुसाफर, ऐसे दौड़ दौड़ने वाले बना के जीते ताकि वो अनामात हासिल करें। सबको छू बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।